धन करुणा प्रचुर हेना प्रभु को था गिला बलदेव ठाकुर
क्या बात है, आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही। आप लोग मेरे पीछे गाइए, आज कुछ विशेष दिन है तो आप लोगों की आवाज़ भी सुनाई पड़ना चाहिए।
हेना प्रभु को था गिला बलदेव ठाकुर कहा मोरा स्वरूप रूप कहा सनातन कहा दास रघु नाथ पति ते पावा मोरा भट जुग कहा कबीरा एक काल को था गेला गोरा नटराज पाषाण को टीबो माथा अनाले पसेब गौरांग गुणेरा निधि कोथा गेले पाबो से सब संगीरा संगे ये कैलो बिलास से संग न पाया कांधे नरोत्तम दास जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
सदा बलदेव विद्याभूषण तेरो भाव तिथि महामहोत्सव की। तो ये तेरो भाव भजन है जिसके शब्द इस प्रकार हैं, जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर। जो प्रेम धन लेके आए थे, कहाँ से लेके आए थे? गोलोक धाम से लेके लाया, गोलोक धाम से लेके आए थे। क्यों लेके आए थे? करुणा प्रचुर, प्रचुर करुणा के कारण। हेना प्रभु कोथा गेला बलदेव विद्याभूषण ठाकुर। तो बलदेव विद्याभूषण ठाकुर कहाँ चले गए? कहाँ मोरा स्वरूप रूप, कहाँ मेरे स्वरूप दामोदर गोस्वामी, कहाँ रूप गोस्वामी हैं, कहाँ सनातन, कहाँ सनातन गोस्वामी हैं, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, और कहाँ पतितों को पवित्र करने वाले रघुनाथ दास गोस्वामी हैं। कहाँ मोरा भट्ट युग, कहाँ मेरे दोनों भट्ट, भट्ट युग कौन कौन? गोपाल भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कहाँ हैं? कहाँ कविराज, कविराज कृष्णदास कविराज कहाँ हैं? एका काले कोथा गेला गोरा नटराज, और एक काले यानी अनायास कहाँ चले गए? गोरा नटराज जो गोरे हैं नर्तकों के राजा कौन? चैतन्य महाप्रभु कहाँ चले गए? पाषाणे कुटीबो माथा, मैं अपने माथे को पत्थर में फोड़ूं, अनले पसीबो या अग्नि में प्रवेश करूं, गोरांगा गुणेरा निधि कोथा गिले पावो, जो गुणों के भंडार गौरांग हैं उनको कहाँ से प्राप्त करूं, कैसे प्राप्त करूं? शेष अवे संगीरा संगे जे कई लो बिलास, तो जितने संगी थे उन्होंने भगवान के संगे बिलास किया। शेष संग ना पाइया कांदे नरोत्तम दास, उनका संग ना पा करके नरोत्तम दास रो रहे हैं। तो हम बलदेव विद्याभूषण के बारे में सुनेंगे। बलदेव विद्याभूषण का आज तिरुभाव दिवस है हमारे वैष्णव कैलेंडर में, और उनका हमारे वैष्णव कैलेंडर में आविर्भाव दिवस नहीं आता, आविर्भाव अज्ञात है। तो साल में केवल एक ही दिन होता है कि हम इनको याद करें, है ना। तो इसलिए हम इनके विषय में कुछ सुनेंगे, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। इनका आविर्भाव अज्ञात है और जन्म स्थान भी अज्ञात है। तो इन्होंने थोड़ी आयु में ही व्याकरण और काव्य अलंकार न्याय शास्त्र में विशेष योग्यता प्राप्त कर ली थी बचपन में ही, और फिर निकल पड़े थे तीर्थ यात्रा के लिए, तीर्थ भ्रमण के लिए निकल पड़े। इसी अवधि में मध्वाचार्य के मठ में रहे और तत्ववाद तत्ववाद का जो है उन्होंने अध्ययन किया, और इस प्रकार से भारत के विभिन्न स्थानों में इन्होंने तत्ववाद का प्रचार किया। भ्रमण करते हुए फिर ये जब आए तो जगन्नाथपुरी में जब आए तो यहाँ इनके जीवन को एक विशेष मोड़ मिला, इनके जीवन को कुछ विशेष जो है इनके जीवन में कुछ विशेष घटना हुई। क्या हुआ कि राधा दामोदर नाम के एक भक्त थे, तो उनसे इनका मिलन हुआ। राधा दामोदर जो है गौड़ीय भक्त थे, तो इनसे इनका मिलन हुआ। और ये राधा दामोदर रसिकानंद के शिष्य के शिष्य थे। रसिकानंद हमारे गौड़ी परंपरा के बहुत बड़े वैष्णव आचार्य हैं। रसिकानंद उनके शिष्य के शिष्य राधा दामोदर पंडित राधा दामोदर से इनका मिलन हुआ, इनकी भेंट हुई। और उस समय जो है इनको बलदेव विद्याभूषण को गौर सुंदर की कृपा का जो है पता चला, भगवान चैतन्य की कृपा का पता चला, और गौड़ी वैष्णव सिद्धांत के बारे में इनको जानकारी मिली। तो फिर इन्होंने फिर जो है कई दिनों तक उनके साथ में विचार विमर्श किया और तत्ववाद सिद्धांत से भी ऊपर जो अचिंत्य भेदा भेद का सिद्धांत है उसको फिर इन्होंने ग्रहण किया। तो पहले मध्वाचार्य संप्रदाय में थे, फिर ये गौड़ीय संप्रदाय में आ गए। तो राधा दामोदर पंडित की कृपा से इनको गौड़ीय सिद्धांत का पता चला, भगवान चैतन्य के अचिंत्य भेदा भेद सिद्धांत का पता चला और ये जो है फिर इस गौड़ीय संप्रदाय में आ गए। और फिर इन्होंने हरे कृष्ण मंत्र ग्रहण किया और जीव गोस्वामी के 6 संदर्भों का अध्ययन करना आरंभ कर दिया। बलदेव विद्याभूषण ने थोड़ी समय में गौड़ी वैष्णव सिद्धांत में पांडित्य प्राप्त कर लिया, बहुत बड़े पंडित बन गए। अब तत्ववाद को जो है भूल गए और गौड़ी वैष्णव सिद्धांत के जो है आचार्य बन गए, बहुत बड़े आचार्य बन गए। और फिर राधा दामोदर गोस्वामी से अनुमति लेकर के ये जो है वृंदावन में आ गए और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उस समय गौड़ीय वैष्णव आचार्य थे तो उनसे और सीखने के लिए वृंदावन में आ गए। उस समय विश्वनाथ चक्रवर्ती बहुत प्रसन्न हुए कि बलदेव बहुत विनम्र हैं और इनके अंदर बहुत वैराग्य है और स्वाध्यायशीलता है, ग्रंथों का अध्ययन करने में विशेष रुचि है। तो बहुत प्रसन्न हुए और बलदेव को अपने निकट रखा, अचिंत भेदा भेद सिद्धांत के संबंध में विशेष रूप से शिक्षाएं प्रदान की। और अब ये जो है पूर्ण रूप से गौड़ी सिद्धांत का जो है प्रचार करने लगे। इसी बीच में जयपुर के राज दरबार में रामानंदी संप्रदाय के कुछ वैष्णवों ने गौड़ी संप्रदाय के संबंध में कुछ तर्क उठा दिए। तो जयपुर के जो महाराजा थे वो तो गौड़ीय वैष्णव थे लेकिन गौड़ीय संप्रदाय के विरोध में जो रामानंदी संप्रदाय के जो वैष्णव हैं उन्होंने कुछ तर्क उठाए। तो राजा तो इतने विद्वान थे ना कि उनके तर्कों का विरोध कर पाते। तो राजा ने क्या किया कि राजा ने वृंदावन में सूचना पहुंचाई कि गौड़ीय संप्रदाय के जो आचार्य हैं वो यहाँ पर आकर के शास्त्रार्थ करें क्योंकि ये लोग गौड़ीय संप्रदाय को चुनौती दे रहे हैं। तो रामानंद संप्रदाय के जो वैष्णव हैं उन्होंने एक चुनौती ये दी कि गौड़ीय संप्रदाय को एक प्रामाणिक नहीं माना जाएगा क्योंकि इनका अपना कोई ब्रह्म सूत्र का भाष्य नहीं है, है ना। तो जयपुर के राजा चूँकि गौड़ी संप्रदाय के ही शिष्य थे तत्काल वृंदावन में विश्वनाथ चक्रवर्ती के पास समाचार भेज दिया कि आप जल्दी आइए और गौड़ी वैष्णव संप्रदाय की इज्जत को बचाइए। राजा खुद चाहते थे गौड़ी संप्रदाय की इज्जत बचाने के लिए। तो उस समय क्या हुआ, विश्वनाथ चक्रवर्ती बहुत वृद्ध हो चुके थे और वृंदावन से जयपुर का जो रास्ता है उसमें बहुत दुर्गम था। उस समय गाड़ियाँ नहीं चलती थी, कारें नहीं होती थी, है ना, बसें नहीं होती थी और पक्के रास्ते भी नहीं थे। अभी तो सब पक्के रास्ते सड़कें बन गई तो बड़ा मुश्किल था। अब अगर जाएं तो कैसे जाएंगे, बैलगाड़ी से जाएंगे तो बहुत कष्टदायक यात्रा होगी और विश्वनाथ चक्रवर्ती हो गए थे काफ़ी बूढ़े। तो वृंदावन से जयपुर अब वो कैसे जाएँ, तो उन्होंने अपने शिष्य बलदेव विद्याभूषण को वहाँ भेज दिया। तो बलदेव विद्याभूषण जो है पूरी तरह से पारंगत थे, शास्त्रों में पूरी तरह से निपुण थे। तो उन्होंने जो है विशाल जो है अब तर्क युद्ध शास्त्रार्थ जो है शुरू कर दिया। तो बलदेव विद्याभूषण का जो है शास्त्र ज्ञान इतना था कि काफ़ी मतलब लंबा उनके साथ में शास्त्रार्थ होता रहा और बलदेव विद्याभूषण के सामने वो टिक नहीं पाए और बलदेव विद्याभूषण ने जब उन्होंने फिर ये बात रखी कि आपका जो गौड़ी संप्रदाय है तो इसका क्या प्रमाण है, अगर आपके पास में वेदांत सूत्र का भाष्य नहीं है, तो बलदेव भूषण ने बताया कि गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत को ही वेदांत सूत्र का प्राकृतिक भाष्य बतलाया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि श्रीमद् भागवत जो है नेचुरल कॉमेंट्री ऑफ वेदांत सूत्रा, तो व्यास जी ने ही वेदांत सूत्र लिखे, व्यास जी ने श्रीमद् भागवत लिखी, तो व्यास जी ने वेदांत सूत्र की जो है व्याख्या श्रीमद् भागवत में लिखी है, तो इसलिए हमारे गौड़ी संप्रदाय में वेदांत सूत्र का अलग से कोई भाष्य नहीं मिलता है। लेकिन उस पर जो है उन्होंने आपत्ति उठाई कि हम तभी स्वीकार करेंगे जब वेदांत सूत्र का भाष्य आपके गौड़ी संप्रदाय में होगा। तो उस समय बलदेव विद्याभूषण ने वचन दिया कि हम शीघ्र ही भाष्य तैयार करेंगे। अब भाष्य लिखना कितने साल लगेंगे, है ना, लेकिन अब कैसे हो सकता है। तो बलदेव विद्याभूषण ने बोल तो दिया उनको, लेकिन फिर गोविंद जी वहाँ तो गोविंद जी थे राजा के महल में, तो गोविंद जी के पास आए और उनसे जो है अब प्रार्थना की कि अब आपके हाथ में हमारी इज्जत है, गौड़ी संप्रदाय की इज्जत आपके हाथ में है। तो गोविंद जी ने इनको रात में सपना दिया, बलदेव विद्याभूषण को सपना दिया और कहा कि तुम भाष्य की रचना करो और मैं तुमसे लिखवाऊंगा। हरि बोल। गोविंद जी ने कहा और ऐसा भाष्य लिखवाऊंगा तुमसे कि कोई अस्वीकार नहीं कर सकता, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि इसको मना करे, है ना। तो फिर जो है शक्ति उनको गोविंद जी ने शक्ति प्रदान की और गोविंद जी की चरण कमलों का ध्यान करके भाष्य लिखना शुरू किया और कुछ ही दिनों में पूरा कर लिया और उस भाष्य को नाम दिया गोविंद भाष्य। गोविंद भाष्य, है ना, गोविंद जी ने लिखवाया, गोविंद भाष्य नाम दिया। और इस भाष्य को लेकर के अब सभा में आए, जयपुर के राजा की जो सभा थी उसमें आए और रामानंदी पंडितों को दिखाया। उस भाष्य को देख करके सब चुप्पी लगा गए, अब सबका मुंह बंद हो गया, जो रामानंदी वैष्णव थे सबका मुंह बंद हो गया, हाँ। और गौड़ी संप्रदाय की विजय हुई और राजा ने जो है बहुत प्रसन्नतापूर्वक जो है बलदेव जी को विद्याभूषण की उपाधि प्रदान की। अरे वो तो ये जो सभा थी ये 1706 में हुई थी और ये गलता नामक स्थान पर हुई थी। तो रामानंदी संप्रदाय के पंडितों ने बलदेव विद्याभूषण के सामने अपनी पराजय स्वीकार की और शिष्यत्व ग्रहण करने इच्छा कि हमें आप शिष्य बनाइए अपना। बलदेव विद्याभूषण से कहा कि हमें आप अपना शिष्य बनाइए। तो बलदेव विद्याभूषण में बहुत विनम्रता थी तो उन्होंने फिर इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि चार संप्रदाय हैं तो स्त्री संप्रदाय भी जो है सर्वसम्मत है। तो उन्होंने कहा कि मर्यादा की मैं हानि नहीं करना चाहता हूँ, तो इसलिए आप लोगों को मैं जो है शिष्य नहीं बनाऊँगा। तो बलदेव विद्याभूषण जो है फिर जयपुर से विजय पत्र लेकर के आए, कहाँ पर आए, वृंदावन में, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के सामने उन्होंने विजय पत्र अर्पित किया और पूरा समाचार सुनाया। इस समाचार से जितने भी वृंदावन के वैष्णव थे बहुत आनंदित हुए और विश्वनाथ चक्रवर्ती ने बलदेव को बहुत आशीर्वाद दिए और बलदेव जी ने फिर षट संदर्भ का भी भाष्य लिखा। तो षट संदर्भ जो है जीव गोस्वामी का लिखा हुआ है, उसके भी भाष्य उन्होंने लिखे। तो बलदेव विद्याभूषण के जो लिखे हुए ग्रंथ हैं तो बहुत से उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, तो कम से कम नाम सुन लीजिए उनके ग्रंथों के नाम। एक तो गोविंद भाष्य जिसकी चर्चा की है, फिर श्री सिद्धांत रत्न दूसरा ग्रंथ, तीसरा ग्रंथ है साहित्य कौमुदी, चौथा वेदांत सिमंतक, पांचवा प्रमेय रत्नावली, छठा सिद्धांत दर्पण, सातवा काव्य कौस्तुभ, आठवां व्याकरण कौमुदी, नौवां पद कौस्तुभ, दसवां ईशादि उपनिषद भाष्य, कितना 10 हो गया ना। 11वां गीता भूषण भाष्य, 12वां श्री विष्णु सहस्त्र नाम भाष्य, 13वां संक्षिप्त भागवतामृत टिप्पणी, 14वां सारंग रंगदा, 15वां तत्व संदर्भ टीका, 16वां स्तवमाला विभूषण भाष्य, 17वां नाटक चंद्रिका टीका, 18वां चंद्रालोक टीका, 19वां साहित्य कौमुदी और 20वां टीका कृष्णानंदिनी। अच्छा ये इकट्ठा है तो कितना हो गया 20वां साहित्य कौमुदी टीका कृष्णानंदिनी, फिर 21वां श्रीमद् भागवत टीका जो पूरी नहीं हुई है। तो इस प्रकार से जो है इनके बहुत से ग्रंथ हैं। तो आज उनका तिरुभाव दिवस है, तो हम प्रार्थना करें कि आज के दिवस पर हमें इनकी ऐसी कृपा प्राप्त हो कि हमारी भी जो मनोवृत्ति है वो श्री कृष्ण के चरण कमलों में ऐसी स्थिर हो कि श्री कृष्ण भी हमारी रक्षा करें जैसे कि इनकी रक्षा की गोविंद जी ने और इनसे भाष्य लिखवाया है ना, और इन्होंने गौड़ी संप्रदाय की इज्जत बढ़ाई, तो हम लोग भी गौड़ी संप्रदाय की इज्जत बढ़ाएं अपने चरित्र से। तो ऐसी जो है हमें प्रार्थना करनी चाहिए श्री बलदेव विद्याभूषण तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की। अब दूसरा त्यौहार है श्रीमती गंगा माता गोस्वामिनी का आविर्भाव, तो इनका भी साल में एक ही दिन आता है क्योंकि इनके तिरुभाव की सूचना नहीं है, हमारे वैष्णव कैलेंडर में इनके तिरुभाव की सूचना नहीं है, तो साल में एक ही दिन आता है इनको याद करने का। तो इनके बारे में हम सुनेंगे, बहुत ही विशेष इनका जो है चरित्र है। इस समय बांग्लादेश में जो राजशाही जिला है उसके अंतर्गत पुटिया के राजा थे नरेश नारायण, वहाँ के राजा थे नरेश नारायण, और उनकी एकमात्र पुत्री थी सची नाम की, एकमात्र पुत्री, कोई पुत्र नहीं था, तो फिर कोई उत्तराधिकारी भी नहीं, पुत्री उत्तराधिकारी, तो वो क्या सोचते थे कि चलो ठीक है पुत्री है तो पुत्री का विवाह होगा जिससे तो वो उत्तराधिकारी हो जाएगा, दामाद को उत्तराधिकारी, राज्य का उत्तराधिकारी बना देंगे। तो सची अपने बाल्यकाल से ही भक्तिपरायणा थी और बहुत कम समय में व्याकरण काव्य में पारंगत हो गई। सची जब बड़ी हो गई नव यौवन तो सब मुग्ध हो गए इसका नव यौवन देख करके, लेकिन सची का मन किसी भी पुरुष के प्रति आकृष्ट नहीं हुआ, किसी पुरुष के प्रति आकृष्ट नहीं हुआ, उसका मन तो मदन गोपाल में ही लगा, उनको ही पति मानती है ना। अब राजा के लिए पिता के लिए बड़ी चिंता की बात हो गई, एक पुत्री है और वो भी विवाह नहीं करेगी तो राज्य का भार किसको सौंपा जाएगा। नरेश नारायण पुत्री के विवाह के लिए चिंतित हो गए, सची देवी को जब इस बात का पता चला तो वे बोले किसी मरणशील व्यक्ति से विवाह नहीं करूंगी, किसी मरणशील व्यक्ति से विवाह नहीं करूंगी। उनकी इस बात को सुनकर राजा रानी सिर पकड़कर बैठ गए, और एकमात्र पुत्री और वो भी विवाह नहीं करना चाहती है, वंश कैसे चलेगा, चिंता की बात है। इसी में राजा रानी शरीर छोड़ के चले गए। अब राज्य का सारा भार सची के ऊपर आ गया, तो कुछ दिनों तक राज्यकार संभाला, उसके बाद अपने मंत्रियों पर राज्य भार सौंप करके तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ी। तो सदगुरु की खोज करने लगी, तो सबसे पहले पुरी जगन्नाथपुरी पहुँची, कुछ दिनों में वहाँ के दर्शन करके ब्रज धाम में आ गई, और इनको श्री कृष्ण ने कुछ ऐसी प्रेरणा दी कि ब्रज में जाओ तुमको गुरु वहाँ मिलेंगे। ब्रज में आई तो सची देवी को जो है गौर नित्यानंद के महान अनुरागी हरिदास पंडित गोस्वामी मिले उनको। ये हरिदास पंडित जो है ये गदाधर पंडित के शिष्य अनंत आचार्य के शिष्य हैं। तो गदाधर पंडित 5 तत्वों में से एक हैं, राधा रानी के अवतार हैं, चैतन्य महाप्रभु के संगी, उनके शिष्य अनंत आचार्य, उनके शिष्य हरिदास पंडित। तो हरिदास पंडित से इनका जो है साक्षात्कार हुआ, और देवी सची देवी बहुत आनंदित हुई और अब इनको जो है पूरा जो है आश्रय मिल गया, गुरु आश्रय मिल गया और प्रार्थना करने लगे, है ना। तो हरिदास पंडित ने सची की परीक्षा लेने के लिए कहा, है परीक्षा क्यों, कि राजकन्या, तो राजकन्या जो है ब्रज में कैसे जीवन बिताएगी, कैसे भजन करेगी राजा की पुत्री। तो हरिदास पंडित ने ऐसे तो नहीं कहा, लेकिन दूसरे प्रकार से कहा। क्या कहा, कि राजकन्या के लिए ब्रज में रहकर निष्किंचन रूप से भजन करना संभव नहीं है। निष्किंचन का मतलब कुछ भी अपने पास ना रहे, अपने पास कुछ भी ना हो, है ना। भोजन भी जो है अगले दिन का भोजन भी नहीं होना चाहिए ब्रज में रहें, तो संभव नहीं है। राजपुत्री के लिए ब्रज में निष्किंचन रह करके भजन करना संभव नहीं है। तुम्हारे लिए तो घर पर रहकर भजन करना ही ठीक रहेगा, अपने घर में जाओ भजन करो। तो हरिदास पंडित ने कहा, सची देवी ने समझ लिया कि इनके कहने का उद्देश्य क्या है, तो उन्होंने जो है क्या किया, तीव्र वैराग्य के साथ सेवा करने लगीं और श्रेष्ठ वस्त्रों को आभूषणों को भी त्याग दिया, पूरी तरह से त्याग दिया। श्रेष्ठ वस्त्र राजकन्या के जैसे वस्त्र हैं, आभूषण हैं, सब त्याग दिए। और हरिदास पंडित गोस्वामी ने सची देवी से कहा, अगर तुम जो है लज्जा और मान और भय का त्याग करके ब्रज में मधुकरी कर सको तभी कृपा मिलेगी। मधुकरी का मतलब क्या है, मधुकर से मधुकरी बनने, मधुकर बोलते हैं किसको, भ्रमर, तो भ्रमर को मधुकर बोलते हैं। तो मधुकर जो भ्रमर है वो क्या करता है, एक एक फूल से थोड़ा थोड़ा मधु इकट्ठा करता है। तो उसी प्रकार से मधुकरी का मतलब है कि घर घर में जाओ और थोड़ा थोड़ा भोजन मांग करके अपना पेट भरो। एक घर में आपको पूरा भोजन नहीं लेना है, कुछ टुकड़े एक घर से लेना, दूसरे घर से कुछ टुकड़े लेना, ऐसे टुकड़े 7 घरों से लेकर के आप जो है पेट भरो, तो जो है मधुकरी कहलाती है। तो हरिदास पंडित ने कहा कि मधुकरी जो है जब करोगी, ब्रजवासियों के घर घर जाकर के मधुकरी करो, तो फिर ब्रजवासी उनके शरीर के दिव्य तेज को समझकर समझ गए कि असाधारण महिला है। हालांकि बिल्कुल चिथड़े धारण कर रही हैं, और कोई आभूषण नहीं, कुछ भी वस्त्र नहीं, चिथड़े धारण की, लेकिन तो भी ब्रजवासी समझ गए असाधारण, क्योंकि तेज है, शरीर में तेज है। तीव्र वैराग्य को देख करके वैष्णव लोग चमत्कृत हो गए कि एक माताजी भी जो है इतना हो सकती हैं, है ना, कि माताजी के ही कारण तो जो है ये सब जो है चल रहा है, बड़े बड़े जो गगनचुंबी भवन बनाए जा रहे हैं माताजी के कारण ही बनाए जा रहे हैं। अगर माताजी ना हो, व्यक्ति विवाहित होता है तो वो जो है अपना कहीं भी जमीन में सो जाता है, जब विवाहित होता है तो फिर माताजी की आवश्यकताएं होती हैं, फिर उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बड़े बड़े ऑफिस बनते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनती हैं, है ना, और बड़े बड़े भवन बनते हैं, है ना, और श्रृंगार की जो है कितनी चीज़ें हैं, कॉस्मेटिक्स, ये सब जो बन रहे हैं माताजी के कारण बनते हैं, है ना। लेकिन एक माताजी जो है मतलब ऐसी भी हैं कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, तो वैष्णव भक्त चमत्कृत हो गए, चमत्कार हुआ कि बहुत बड़ा चमत्कार, है ना। समय के साथ इनका शरीर अब क्षीण भी हुआ और मलिन भी हुआ, क्योंकि साबुन से स्नान नहीं करोगे तो शरीर में मैल जमेगा, तो स्नान करते पानी में स्नान करती, है ना, साबुन का भी इस्तेमाल नहीं करती, तो शरीर कैसा हो गया, मैला हो गया, शरीर दुर्बल हो गया। लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया, नियमित रूप से यमुना में स्नान करना, मंदिर के झाड़ू लगाना, परिक्रमा करना, आरती का दर्शन करना, कथा श्रवण करना, इनके तीव्र वैराग्य को देखकर हरिदास पंडित के मन में कृपा की धारा फूट पड़ी कि एक माताजी होकर के इतना इनका जो है समर्पण है। तब सची देवी को बुलाकर हंसते हंसते बोले कि राजकन्या होकर भी तुमने श्री कृष्ण भजन के प्रयास में जैसा त्याग प्रकट किया है, इससे मैं परम संतुष्ट हुआ हूँ। अब तुम शीघ्र ही मंत्र ग्रहण करो। उन्होंने कहा मंत्र ग्रहण करो, इसके बाद चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन हरिदास पंडित ने राधा कृष्ण मंत्र की दीक्षा दी और ये श्री कृष्ण प्रेममय हो गई। मंत्र प्राप्त करके श्री कृष्ण प्रेममय हो गई, बहुत दीनहीन भाव से श्री गुरु और गोविंद की सेवा करने लगी। प्रतिदिन पंडित गोस्वामी से गोस्वामियों के शास्त्र श्रवण करने लगें और बहुत थोड़े समय में गोस्वामियों के सिद्धांत में पारंगत हो गई। हरिदास पंडित गोस्वामी की एक और शिष्य थी जो लक्ष्मी प्रिया देवी थी, वो वृंदावन में आई तो लक्ष्मी प्रिया रोज 300,000 हरि नाम का जप करती थी। तो हरिदास पंडित ने जो है उनको आदेश दिया कि वे सची देवी को साथ लेकर के राधा कुंड में जाकर भजन करें, दोनों माताएं साथ साथ रहो और राधा कुंड में भजन करो। तो लक्ष्मी प्रिया ने गुरुदेव के आदेश से सची के साथ राधा कुंड में भजन करना शुरू कर दिया। सची देवी रोज लक्ष्मी प्रिया के साथ गोवर्धन की परिक्रमा करने लगी। हैं, सोचिए, रोज गोवर्धन की परिक्रमा करती हैं। जब राधा कुंड में भजन कर रही थी, हरिदास पंडित ने बुलाकर आदेश दिया कि तुम शीघ्र ही पूरी धाम में जाओ, वहाँ भजन करो। किनको? सची माता, सची देवी को, कि तुम पूरी धाम में जाके भजन करो और गौर सुंदर की वाणी का जो है प्रचार करो, प्रवचन करो। वहाँ पुरी में जाकर के भगवान गौर सुंदर वाणी का प्रवचन करो। उस समय सभी गौर पार्षद अप्रकट हो चुके थे, भगवान चैतन्य के संगी सब जा चुके थे परम धाम में। तो सची देवी वृंदावन से क्षेत्र धाम में आ गई और सार्वभौम पंडित के घर में रहकर भजन करने लगी। सार्वभौम पंडित का भी घर खाली पड़ा था, वो सब चले गए परम धाम में चले गए थे। तो सार्वभौम पंडित के घर में भजन करने लगी और श्रीमद् भागवत का पाठ सुनाने लगी। तो सार्वभौम पंडित का घर बहुत दिनों तक ना रहने के कारण जीर्ण शीर्ण हो चुका था, केवल दामोदर सालग्राम विराजमान थे। तो सची देवी वहीं रहकर भजन करने लगी और भागवत के सिद्धांतों को सुनने के लिए श्रद्धालु लोग दिन प्रतिदिन उसी स्थान में आने लगे। इन माताजी का प्रवचन सुनने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आने लगे प्रवचन सुनने के लिए और बड़ी जल्दी भागवत वक्ता के रूप में बहुत प्रसिद्ध हो गई ये भागवत वक्ता। फिर पुरी के राजा मुकुंद देव एक दिन सची के आवास पर आए भागवत सुनने के लिए और बहुत प्रभावित हुए, इनका प्रवचन सुनकर बहुत प्रभावित हुए। कौन? पुरी के राजा मुकुंद देव। और कुछ अर्पण करने की इच्छा की तो उसी दिन रात को उन्होंने सपने में देखा जगन्नाथ जी कह रहे हैं कि सची को श्वेत गंगा के निकट स्थान अर्पित कर दो। राजा को भगवान जगन्नाथ स्वयं सपने में बताते हैं कि सची को जो है श्वेत गंगा के निकट स्थान अर्पित करो। दूसरे दिन सवेरे ही मुकुंद देव सची देवी के निकट आए, बहुत विनीत भाव से राजा को बैठने का आसन प्रदान किया। सची देवी ने कारण पूछा कि आप कैसे आए, तो मुकुंद देव ने जब जगन्नाथ जी का आदेश बताया कि उनका आदेश है जगन्नाथ जी का कि मैं आपको श्वेत गंगा के निकट स्थान प्रदान करूं, तो सची देवी ने असम्मति प्रकट की। लेकिन राजा बहुत अनुरोध करते हैं तो फिर जगन्नाथ का आदेश मान करके उन्होंने जो है स्वीकार कर लिया। राजा मुकुंद देव ने सची देवी के नाम पर श्वेत गंगा के निकट की भू संपत्ति का दान पत्र प्रस्तुत कर दिया और पूरी धाम में पहले से ये प्रचार हो गया था कि सची देवी स्वयं एक राजा की कन्या है। एक बार महावारुणी स्नान का योग आया तो सची देवी ने गंगा स्नान करने के लिए जाना चाहा, लेकिन हरिदास पंडित जो उनके गुरु थे उनका आदेश क्या था कि जगन्नाथपुरी में ही रहो, तो जगन्नाथपुरी में तो गंगा जी है नहीं। तो इनकी इच्छा थी गंगा स्नान करने की, तो जगन्नाथ जी ने वो इच्छा इनकी जो है नोट कर ली, सपना दिया। जगन्नाथ जी ने सपना दिया कि तुम कोई चिंता ना करो, जिस दिन वारुणी स्नान होगा उस दिन श्वेत गंगा में तुम स्नान करना, गंगा देवी तुम्हारी संग की इच्छा करेंगी, गंगा जी तुम्हारी संग की इच्छा करेंगी। तुम गंगा में स्नान करना चाहती हो, गंगा जी चाहती हैं कि तुम उनमें स्नान करो, तो गंगा जी स्वयं जो है प्रकट होंगी और श्वेत गंगा में प्रकट हो जाएंगी। सपने को देख करके सची देवी बड़ी प्रसन्न हुई, वारुणी स्नान का योग आया और श्वेत गंगा में उतरी तो गंगा देवी इनको बहा करके ले जाने लगी। बहते बहते जगन्नाथ मंदिर के भीतरी भाग में पहुंच गई। अब रात में मंदिर तो बंद, ताला बंद, और गंगा जी इनको ले गई कहाँ, जगन्नाथ मंदिर के अंदर। अब ये जो है बड़े आनंदपूर्वक स्नान कर रही हैं गंगा में, और इतना कोलाहल सुनकर मंदिर के द्वार रक्षकों की नींद टूट गई। रक्षक लोग तो मतलब वैसे उनको जागना चाहिए लेकिन फिर भी सो जाते हैं, रक्षक जो है सो जाते हैं, तो नींद टूट गई। तो समझ में आया कि भीतर से इतनी आवाज़ आ रही है, तो शीघ्रतापूर्वक सूचना कार्याध्यक्ष को दी, और फिर कार्याध्यक्ष ने राजा को समाचार दिया, तो राजा ने मंदिर खोल करके जो है देखने का आदेश दिया। तो राजा की आज्ञा से मंदिर खोला गया। अब रात में तो मंदिर खुलता नहीं, राजा की आज्ञा से मंदिर खोला गया। तो सची देवी जो है अकेली खड़ी थी, और वो तो भागवत पाठिका थी। अरे ये तो भागवत प्रवक्ता माता जी हैं, ये अंदर हैं। तो जगन्नाथ के सेवक पंडा लोग सोचने लगे, जगन्नाथ देव के अलंकार हरण करने के लिए सबकी नज़र बचाकर भीतर प्रविष्ट हुई होंगी। बहुतों ने कहा यह नहीं हो सकता, कोई और रहस्य होगा। इसके बाद सची देवी को विचार अधीन करके बंदीशाला में रखा गया कि विचार किया जाएगा, भी आपको बंदी बनाया जा रहा है। तो सची माता को बंदी बनाया। सची देवी इस घटना से बिल्कुल घबराई नहीं, और आनंदपूर्वक कृष्ण का नाम ले रहे हैं, उन्हें सबको जो है भगवान की लीला ही दिखाई पड़ रही है। राजा मुकुंद देव ने रात्रि के अंतिम प्रहर में स्वप्न देखा, जगन्नाथ जी बहुत गुस्सा हो रहे हैं जगन्नाथ जी बहुत गुस्सा हो रहे हैं, और बोले सची को बंदीशाला से तुरंत मुक्त करो, और उनके स्नान के लिए मैंने अपने चरणों से गंगा को निकाल करके उनको मंदिर में बुलाया है। जगन्नाथ जी कहते भगवान के चरणों से गंगा निकली और मंदिर के से बाहर निकल आई, दरवाजे बंद है तो भी गंगा जी तो बाहर निकल आई, और श्वेत गंगा में जा करके और सची देवी को लेकर के और अंदर चले गए, है ना। तो जगन्नाथ जी कहते हैं यदि अपना कल्याण चाहते हो तो पुजारी और पंडाओं को साथ लेकर सची के चरणों में क्षमा प्रार्थना करो, और नहीं तो क्या होगा, अनिष्ट हो जाएगा। जगन्नाथ जी धमकी दे रहे हैं, बहुत अनिष्ट हो जाएगा, तुमने बहुत अपराध कर दिया है ना, और उनसे मंत्र ग्रहण करो। राजा मुकुंद देव को भी आदेश दिया और सब पंडाओं को कि उनसे मंत्र ग्रहण करो। ये स्वप्न देखकर राजा बहुत भयभीत हो गए, और शीघ्र ही प्रातः स्नान करके पुजारी पंडाओं को साथ लेकर पहुँचे सची देवी को जहाँ बंदी बनाकर रखा गया था। सभी ने जो है उनको मुक्त करवाया, चरणों में दंडवत होकर के गिर गए। राजा ने अनुनय विनय के साथ क्षमा प्रार्थना की, और जगन्नाथ देव के आदेश को बताकर मंत्र देने की प्रार्थना की कि जगन्नाथ जी का आदेश है कि हमें आप मंत्र प्रदान कीजिए। जगन्नाथ देव की लीला को देखकर सची देवी प्रेम पूर्वक रोने लगी। भगवान की इतनी कृपा तो भक्त कैसे सहन करेगा, तो रोएगा। तो भगवान जो है जगन्नाथ इतनी कृपा करते हैं कि देखो गंगा जी को प्रकट कर दिया, और फिर अपने मंदिर में बुला लिया, और फिर बंदी होने के बाद राजा को भी जो है धमकी दे दी, है राजा भी डर करके चरणों में गिरे, तो प्रेम पूर्वक रोने लगी, और राजा को भाग्यवान कहकर उनके सिर पर हाथ देकर आशीर्वाद देने लगी, तुम भाग्यवान हो। सची देवी कहती हैं राजा से, तुम भाग्यवान हो कि तुमको जगन्नाथ जी ने आदेश दिया है ना, तो ये तो तुम्हारा सौभाग्य है। और सिर पर आशीर्वाद देने लगी, और फिर जगन्नाथ देव का आदेश स्वीकार करके शुभ दिन में मुकुंद देव को राधा कृष्ण मंत्र से दीक्षित किया। तो माता गुरु देवी दीक्षा गुरु है। राजा के साथ साथ अनेक पुजारियों ने भी सची देवी के चरणों का आश्रय लिया। उसी दिन से सची देव का नाम हुआ गंगा माता गोस्वामिनी। उनका नाम था सची देवी, सची देवी नाम था गंगा माता गोस्वामिनी, है कि गंगा जी स्वयं इनकी जो है मतलब सखी बन गई, सहचरी बन गई। गंगा जी अपने साथ जो है ले गई जगन्नाथ जी के मंदिर में, भगवान के चरणों में ले गई, हैं कि मैं भगवान के चरणों से निकली हूँ, तुम भी आओ मेरे साथ में, चलो भगवान के चरणों में। गंगा जी की जो है सहेली हैं गंगा माता गोस्वामिनी। फिर महाराज मुकुंद देव ने गुरु दक्षिणा के रूप में गंगा माता को भू संपत्ति देने की इच्छा की, कोई जमीन ले लो। माता सम्मत नहीं हुई, और कहा, तुम्हारी श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति बनी रहे, मैं केवल इतना ही चाहती हूँ, मैं और किसी दक्षिणा को लेने के अधिकारिणी नहीं हूँ। अपने को स्त्री मान करके कि मैं तो दान दक्षिणा लेने की अधिकारिणी नहीं हूँ, विनम्रता है। इस प्रकार से उन्होंने कहा। राजा बार बार उनके चरणों में प्रार्थना करने लगे। फिर गंगा माता ने वैष्णवों की सेवा के लिए दो भांड महाप्रसाद, एक भांड सब्जी, एक प्रसादी वस्त्र और दो पणकड़िया यानी 160 पैसा रोज मध्यान्ह के पूजा के बाद मठ में भेजने की अनुमति दी कि मठ में इतना रोज भेज दिया करो, इतना सामान भेज दिया करो। तो आज भी वो महाप्रसाद नियमित रूप से गंगा माता के मठ में भेजा जाता है। हाँ, वो तो शरीर छोड़ चुके हैं लेकिन वो मठ में अभी भी वो सामान जो है इतना दोपहर के बाद भेजा जाता है ना। तो इस प्रकार से हमने कुछ सुना गंगा माता गोस्वामी के बारे में। अब हमारे पास में ज़्यादा समय नहीं है लेकिन गंगा पूजा का भी आज दिवस है तो हम इनके विषय में सुनेंगे। तो आज का जो दिन है ये बहुत ही पवित्र है गंगा जी के संबंध में, क्योंकि आज के दिन गंगा जी इस पृथ्वी पर आई। तो गंगा जी जो है पहले स्वर्ग में थी और पृथ्वी में नहीं आना चाहती थी, क्योंकि पृथ्वी में आएंगी तो पापी लोग अपने पाप धोएंगे हैं, तो क्यों आना चाहेंगी, तो वो नहीं आना चाहती थी हैं। लेकिन कुछ ऐसी दुर्घटना हुई, राजा सगर के जो 60,000 पुत्र थे हैं, तो कपिल भगवान का अपराध करने से वो भस्म हो गए, तो उनको नरक की प्राप्ति हुई हैं, क्योंकि महाभागवत का अपराध किया था। तो उससे जो है फिर राजा सगर के एक दूसरे पुत्र थे असमंजस, उनके पुत्र हुए अंशुमान, उनके पुत्र हुए दिलीप, उनके पुत्र हुए भगीरथ। तो भगीरथ ने फिर जो है बहुत प्रयत्न किया गंगा जी को लाने के लिए, तो उसको कहते हैं भगीरथ प्रयत्न। अगर आप बहुत प्रयत्न करके किसी कार्य में सफल होते हैं तो क्या कहा जाता है, आपने भगीरथ प्रयत्न किया। तो भगीरथ ने जो है इतना प्रयत्न किया गंगा जी को लाने के लिए, तो गंगा जी जो है आई थी। तो गंगा जी जब आती हैं पृथ्वी पर तो ये भागवत के 5वें स्कंद में वर्णन आता है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, राजन सभी यज्ञों के भोक्ता भगवान विष्णु महाराज बलि की यज्ञशाला में वामन देव का रूप धारण करके प्रकट हुए थे। तब उन्होंने अपने बाएं चरण को ब्रह्मांड के छोर तक फैला दिया और अपने पैर के अंगूठे से उसके आवरण में एक छिद्र बना दिया। दाया पैर उनका नीचे था जमीन में और बाया पैर उन्होंने स्वर्ग में रखा। तो स्वर्ग में एड़ी रखी, तो जो एड़ी के ऊपर जो पंजा है वो कितना ऊपर पहुंच गया, स्वर्ग के ऊपर महर लोग, उसके ऊपर जन लोग, उसके ऊपर सत्यलोक और उसके ऊपर ब्रह्मांड का आवरण। तो ब्रह्मांड के आवरण को छेद दिया उनके पंजे के अंगूठे के नाखून से, तो वो छेद हो गया। तो छेद हो गया तो कारण समुद्र में जो ब्रह्मांड तैर रहा है गेंद की तरह, तो गेंद में अगर छेद हो जाए तो छिद्र से कुछ बूंदें तो आएंगी ना, तो वो कुछ बूंदें आई कारण समुद्र की, तो वही जो है भगवान के चरणों को जब धोया तो वो जिंदा हो गए, वो पानी जिंदा हो गया और वो है गंगा देवी, जीवित हो गया वो पानी। तो वो गंगा देवी जो है भगवान के चरणों से फिर निकली, तो भगवान के चरणों के स्पर्श से वो कुछ बूंदें जो थीं वो गंगा देवी बन गई। तो यहाँ लिखा है कि उस छिद्र से निकले कारण समुद्र के विशुद्ध जल ने गंगा नदी के रूप में ब्रह्मांड में प्रवेश किया। विष्णु के चरण कमलों को जो केसर से लेपित थे, भगवान वामन देव का जो चरण है केसर से लेपित था, धोने से गंगा का जल अत्यंत मनोहर गुलाबी रंग का हो गया। गंगा जी का जल जो है मनोहर गुलाबी रंग का हो गया। गंगा के दिव्य जल के स्पर्श से क्षण भर में प्राणियों के मन के भौतिक विकार शुद्ध हो जाते हैं, किंतु इसका जल सदैव शुद्ध रहता है। चूँकि इस ब्रह्मांड में प्रविष्ट होने के पहले गंगा प्रत्यक्ष रूप से विष्णु जी के चरण कमलों का स्पर्श करती हैं, इसलिए ये विष्णुपदी कहलाती हैं। तो सबसे पहले जब छिद्र से पानी आया तो छिद्र से जो बूंदें आई तो भगवान का चरण उसमें छिद्र में था ही, तो जो है भगवान के छिद्र का से जो है वो विष्णु के चरण के सहारे जो है वो ब्रह्मलोक में आती हैं। तो वो पानी जो है कि बूंदें पूरा पूरा भगवान के चरण को स्पर्श करती हैं, है ना, तो पूरा जो है ना, तो इससे क्या हुआ विष्णुपदी। तो भगवान के चरण से निकली मानी जाती हैं विष्णुपदी। तो गंगा जी का एक नाम है विष्णुपदी। हाँ, बाद में उनके अन्य नाम पड़े जाह्नवी और भागीरथी। तो जाह्नवी नाम क्यों पड़ा कि जब गंगा जी हिमालय से जब नीचे उतरी तो भागीरथ राजा भागीरथ अपने रथ को आगे बढ़ा रहे थे कि माता पीछे पीछे आएगी, और जहाँ उनके 60,000 पूर्वज भस्म रूप में पड़े हुए हैं उनको बहाएगी। तो राजा भागीरथ का रथ आगे आगे चल रहा था। तो जिस समय नवद्वीप से गुजर रहे थे राजा भागीरथ, तो वहाँ जाह्नू मुनि तपस्या कर रहे थे और गंगा जी ने उनका आश्रम बहा दिया। तो जाह्नू मुनि ने गुस्से में क्या किया, पी लिया गंगा जी को, कि देखती नहीं कि ये रास्ता है या रास्ता नहीं है, मेरा आश्रम बहा दिया, तो पी लिया। तो भागीरथ ने फिर जो है पीछे मुड़ के देखा तो माता जी तो नहीं आ रही हैं, क्या हुआ? तो जाह्नू मुनि बैठे हुए हैं, तो उनको फिर प्रसन्न किया। तो ये सब बाधाएँ हैं ना भागीरथ के मार्ग, कितनी बाधाएँ आई गंगा जी को लाने के, तो उनको प्रसन्न किया। तो उन्होंने फिर कान के छिद्र से निकाला गंगा जी को। इस प्रकार से जाह्नवी जाह्नू की पुत्री मानी गई, जाह्नू के शरीर से निकली, कान से उत्पन्न हुई हैं, तो जाह्नू की पुत्री तो जाह्नवी कहलाई। फिर भागीरथी कहलाई, कि भागीरथ के प्रयत्न से ये भारतवर्ष में आई हैं, तो भागीरथी इनका नाम पड़ा। तो विष्णुपदी, जाह्नवी, भागीरथी, इस प्रकार से इनके नाम पड़े। तो ब्रह्मलोक, हाँ, तो जब वो आती हैं गंगा जी, तो 1,000 योगों के बाद गंगा जी का जल ध्रुव लोक में उतरा। ध्रुव लोक सबसे ऊपर है, तो सबसे पहले ध्रुव लोक में आई गंगा जी। 1,000 योगों के बाद ध्रुव लोक में आई। ध्रुव लोक जो इस ब्रह्मांड का सर्वोपरि लोक है, इसलिए सभी संत विद्वान ध्रुव लोक को विष्णुपद कहते हैं। विष्णुपद, तो विष्णुपदी के कारण ये ध्रुव लोक का नाम भी विष्णुपद हो गया, क्योंकि विष्णुपदी आई। तो विष्णुपदी गंगा आई ध्रुवलोक में, विष्णुपद हो गया। फिर महाराज उत्तानपाद के ख्याति प्राप्त पुत्र ध्रुव महाराज परम ईश्वर के सर्वश्रेष्ठ भक्ति कहलाते हैं। तो ध्रुव महाराज वहाँ रहते हैं, तो उनकी भक्ति निष्ठा दृढ़ है। ये जानते हैं गंगा जल भगवान विष्णु के चरण कमल से निकला है, उस जल को अपने लोक में रहते हुए आज तक अपने सिर पर भक्ति पूर्वक धारण करते हैं। कि हमारा कितना सौभाग्य है कि भगवान विष्णु के चरणों का जल हमारे लोक में आया है। हृदय में श्री कृष्ण का निरंतर चिंतन करते रहते हैं, बहुत उत्कंठित होकर जो है उनके नेत्र आधे बंद रहते हैं और आंसू की धारा बहाते हैं, और शरीर पुलकायमान रहता है गंगा जी के जल को अपने सिर में धारण करके। आँखों से आंसू बहाते हैं और शरीर पुलकायमान रहता है। ध्रुवलोक के नीचे सप्तर्षियों के लोक हैं, सप्तऋषि उनके लोक हैं, तो गंगा जी जो है वहाँ आती हैं। हाँ, तो वे भी सप्तऋषि भी जो है गंगा जी के प्रभाव को जानते हैं, अपनी जटाओं में धारण करते हैं गंगा जी को, और यही निष्कर्ष निकालते हैं कि यही परम धन है, यही परम धन है, समस्त तपस्याओं की सिद्धि यही है, और दिव्य जीवन बिताने का सर्वश्रेष्ठ साधन यही जल है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति प्राप्त होने के कारण इन 7 ऋषियों ने भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का परित्याग कर दिया। ज्ञानी लोग सोचते हैं कि भगवान में मोक्ष मिल जाए तो सबसे बड़ा लाभ है, लेकिन 7 ऋषि जो है मोक्ष को बड़ा लाभ नहीं मानते हैं, बल्कि भक्ति को ही जीवन की परम सिद्धि मानते हैं। 7 ऋषि भी जो है ध्रुव महाराज ध्रुव लोक की परिक्रमा करते हैं, 7 ऋषि ध्रुव लोक की परिक्रमा करते हैं, तो उनके अंदर भी भगवान की भक्ति इतनी है कि मुक्ति को वो जो है तुच्छ मानते हैं, और गंगा जल को सिर में धारण करते हैं और भक्ति को ही जीवन की परम सिद्धि मानते हैं। इसके बाद ध्रुव लोक के जो है जो पड़ोसी 7 लोक हैं 7 ऋषियों के लोक, उनको पवित्र करने के बाद गंगा जी का जल जो है करोड़ों देवताओं के विमानों द्वारा चंद्रलोक में आता है, चंद्रलोक में आता है, और चंद्रलोक को जो है पवित्र करके फिर मेरु पर्वत में स्थित ब्रह्मा जी के आवास स्थान पर पहुंचता है। मेरु पर्वत की शिखर पर गंगा जी का जल आता है। फिर गंगा जी का जल जो है मेरु पर्वत के शिखर पर जब आता है तो इसकी 4 धाराएं बनती हैं, गंगा जी की 4 धाराएं बनती हैं, पूरब, और दक्षिण और पश्चिम उत्तर चार दिशाओं में चार धाराएं जाती हैं। सुमेरु पर्वत ये पृथ्वी के बिल्कुल बीच का स्थान है, शिखर है, तो बहुत ऊंचाई पर जो है गंगा जी का जल उतरता है और फिर वहाँ से जब चार धाराएं बनती हैं तो सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा नाम से ये चार धाराएं विख्यात हैं। नारायण तो चार धाराओं में जो सीता धारा है, गंगा जी की जो सीता धारा है, तो ये जो है मेरु पर्वत के शिखर से ये पूर्व दिशा में जाती है, पूर्व दिशा में जाती है और केशराचल पर्वतों के शिखरों पर पहुंचती है और फिर केशराचल पर्वत से चल करके गंधमादन पर्वत के शिखर पर आती है और फिर भद्रासुवर्ष की भूमि में बहती हुई और लवण सागर में पहुंच जाती है। तो ये पूर्व दिशा में जाती है। इसके बाद फिर गंगा की जो है जो अलकनंदा नाम की धारा है ये दक्षिण दिशा में आती है, दक्षिण दिशा में आती है तो दक्षिण दिशा में ये जो है हेमकूट और हिमकूट पर्वतों के शिखरों पर गिरती है और फिर भारतवर्ष के भूभाग में आती है और अपने जल से आपूर्त करती हुई फिर दक्षिण दिशा के लवण सागर में मिल जाती है। जो व्यक्ति इस नदी में स्नान करने आते हैं वो भाग्यशाली हैं, उन्हें पग पग पर राजसूय और अश्वमेध जैसे महान यज्ञों को करने का फल प्राप्त होता है। यानी गंगा जी में स्नान करने के लिए कोई व्यक्ति अगर चलता भी है तो एक एक कदम पर राजसूय यज्ञ का फल, अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो गंगा जी की अलकनंदा जो धारा है, जो कि दक्षिण दिशा सुमेरु के दक्षिण दिशा से जो है आती है, तो कैलाश पर्वत पर शिव जी की जटाओं को पवित्र करती है। तो वे सामान्यतः लोग सोचते हैं कि शिव जी ने सीधे गंगा जी की धारा को अपनी जटाओं पर लिया जो स्वर्ग से गिरी, लेकिन स्वर्ग से जब गिरती हैं गंगा जी तो शिव जी की जटाओं पर नहीं गिरती हैं, स्वर्ग से गिरती हैं तो सुमेरु पर्वत पर गिरती हैं और सुमेरु पर्वत के शिखर से कैलाश पर्वत में आती हैं और उस वहाँ से शिव जी अपने जटाओं में धारण करते हैं गंगा जी को और कैलाश से फिर हिमालय पर्वत में आती हैं, हिमालय से फिर वो आगे बहती हैं। तो ये दक्षिण दिशा की धारा है, हैं जो अलकनंदा है, सीता, अलकनंदा और चक्षु जो पश्चिम दिशा में हैं जाती है। तो पश्चिम दिशा में चक्षु नाम की धारा है, माल्यवान पर्वत के शिखर पर गिरती है और वहाँ से फिर झरने के रूप में केतुमाल वर्ष में प्रवेश करती है और वहाँ से बह करके पश्चिम के समुद्र में मिल जाती है। और एक धारा है भद्रा, तो जो भद्रा नाम की धारा है तो वो सीता और प्रतीच्याम दक्षिण ये अलकनंदा हो गया, हाँ ये है भद्रा नाम की जो धारा है ये मेरु पर्वत से उत्तर दिशा में जाती है और कुमुद पर्वत के शिखर में, फिर नील पर्वत के शिखर में, फिर श्वेत पर्वत के शिखर में, फिर श्रृंगवान पर्वत के शिखर में जाकर के कुरु, उत्तर कुरु में बहती हुई लवण समुद्र में मिल जाती है। इस प्रकार से चार दिशाओं में गंगा जी की धारा सुमेरु पर्वत से बहती है। तो इस गंगा जी का जो है इतना महात्म्य है। तो आज गंगा पूजा का दिन है, हमारे वैष्णव कैलेंडर में तीन ऐसे त्यौहार आते हैं जो गंगा के संबंध में हैं। एक तो गंगा पूजा आज के दिन है, लेकिन फिर दूसरी घटना जो रास्ते में हुई गंगा जी के रास्ते में, जो जहनु मुनि पी गए, तो वो दिन आता है जहनु सप्तमी का, कि जिस दिन जहनु मुनि ने उनको पी लिया फिर अपने कान से निकाला तो उनका नया जन्म हुआ गंगा जी का। तो वो जो है पृथ्वी में जन्म की एक घटना है और उन्होंने अपना जो है पिता जहनु मुनि को बनाया, तो जहनु सप्तमी की भी तिथि हमारे वैष्णव कैलेंडर में आती है। फिर तीसरी तिथि आती है गंगा सागर मेला, तो फिर जब वहाँ से चलती हैं तो समुद्र में मिलती हैं, तो वो दिन आता है वो मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर मेला आता है। तो गंगा जी के संबंध में हमारे वैष्णव कैलेंडर में तीन दिन आते हैं, है ना। तो आज का जो दिन है वो समझो पहली घटना है कि गंगा जी सुमेरु पर्वत पर गिरी, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने कुछ चर्चा की है, तो अभी हमारे पास में ज़्यादा समय नहीं है, थोड़ा समय है, तो आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूँ? हाँ जी, वो हैंड माइक है, हैंड माइक निकाल लो। अक्षय तृतीया को गंगा जी का जन्म हुआ, अक्षय तृतीया को सत्युग प्रारंभ हुआ, सत्युग का प्रारंभ हुआ अक्षय तृतीया को। लेकिन जो गंगा पूजा है वो जो है आज के दिन गंगा जी उतरी पृथ्वी पर। गंगा जी, अवतरण, अवतरण, हाँ, तो गंगा पूजा के दिन ही समझना चाहिए। ठीक, और कोई, और कोई? हाँ, मत बोलिए। मानसी गंगा जो है, जो ब्रज में है, जो मानसी गंगा हैं, तो इनके संबंध में ब्रजमंडल महात्म में ये बात आती है कि नंद महाराज जो है एक बार तैयारी करते हैं गंगा में स्नान करने की, तो ब्रजमंडल से बाहर जाना पड़ेगा। तो श्री कृष्ण नहीं चाहते हैं कि नंद महाराज ब्रजमंडल से बाहर जाएं, क्योंकि ब्रजमंडल में का जो महात्म है वो सबसे ज़्यादा ब्रजमंडल का महात्म है। तो श्री कृष्ण जो है कहते हैं कि आप किस लिए जा रहे हैं? तो नंद महाराज कहते हैं हम गंगा में स्नान करने के जाएंगे। तो बोले कि गंगा जी तो यहीं पर हैं। तो फिर गंगा जी को उन्होंने प्रकट किया, और नंद महाराज जितने भी गोप थे उन सबको विश्वास दिलाने के लिए गंगा जी को साक्षात दर्शन कराया मकर वाहिनी के रूप में, मगरमच्छ के वाहन के ऊपर बैठी हुई गंगा जी। तो साक्षात गंगा जी ने दर्शन दिया। तो मानसी गंगा भगवान कृष्ण अपने मन से प्रकट की गंगा जी को, तो ऐसा बताया गया है। ठीक है, हाँ जी, गंगा जी ने माइक माइक दे दो।
गंगा जी ने ये निवेदन किया था कि जैसे आपने यमुना महारानी को इतना सम्मान दिया है, तो मैं भी चाहती हूँ कि मुझे भी ब्रज में स्थान।
हाँ, वो, हाँ वो भी है, वो भी है कि खैर ये अलग घटना है। तो गंगा जी तो मतलब आ गई, लेकिन चैतन्य का जो अवतार हुआ था, तो चैतन्य के अवतार में जो है गंगा जी की बहुत प्रार्थना थी कि जैसे कृष्ण अवतार में आपने यमुना जी को बहुत कृपा की, आप गंगा जी में, यमुना जी में विहार करते रहे, तो आप मेरे ऊपर भी कृपा करो। तो वहाँ जो है जैसे ब्रजलीला में श्री कृष्ण यमुना में विहार करते थे, तो यहाँ जो है गंगा में विहार करते थे, चैतन्य महाप्रभु गंगा में विहार करते थे। लेकिन हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने वो लीलाएं नहीं की जो ब्रज में माधुर्य लीलाएं थीं, वो लीलाएं नहीं की, गंगा में विहार करते थे तो अपने सखाओं के साथ विहार करते थे। और जो है बचपन की लीलाएं, जैसे बालक क्रीड़ा करते हैं तो गंगा जी का जल जो है काफ़ी उसमें कीचड़ आ जाती थी, मतलब उसको पीने लायक नहीं रहता था जब वो विहार करते थे, खेला करते थे, तो फिर लोग जो है गंगा जी का पानी पीने के लिए जो भरने आते थे उनको फिर जो है रोकना पड़ता था, क्योंकि ये खेल खेल करके उस पानी को जो है गंदा कर देते थे। इस प्रकार से इन्होंने गंगा जी के ऊपर भी कृपा की। ठीक है, और कोई? तो हाँ जी, पीछे, हाँ, किसके
बलदेव
विद्याभूषण के बारे में?
तो ये देखा जाता है कि बलदेव विद्याभूषण पहले मध्वाचार्य संप्रदाय से दीक्षित थे, मध्वाचार्य संप्रदाय थे, तो बाद में उन्होंने गौड़िया वैष्णव में निवेश किया, गौड़िया वैष्णव में उन्होंने दीक्षा लिया, तो हमें जो पढ़े हैं, हमें जो जाने हैं अपने गुरुओं से कि संप्रदाय को बदलना नहीं चाहिए। जो गुरु को बदलता है तो उसको गुरु अपराध करेगा। तो इसमें क्या क्या हो कि बदल विद्या उन्होंने मधुआ संप्रदाय को बदल के गौड़े वैष्णव।
हाँ, इनका प्रश्न है, इनका प्रश्न है कि अगर गुरु का त्याग करे तो उसमें जो है बहुत दोष लगता है। तो पहले उन्होंने मध्य संप्रदाय में वो थे और उसके बाद फिर जो है ये गौड़ी संप्रदाय में आ गए। ये इसमें कोई दोष नहीं है क्योंकि मध्य संप्रदाय की ही एक शाखा है भगवान चैतन्य। तो भगवान चैतन्य के संप्रदाय में गौड़ी संप्रदाय में आना, तो इसमें क्या है कि और कुछ विशेष इसमें जो है समझाया गया है। भगवान कृष्ण की जो स्थिति है, जीवों का भगवान के साथ संबंध है, तो जो तत्ववाद है मध्वाचार्य का, तो उससे ज़्यादा स्पष्ट ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व है। वैसे तो मध्वाचार्य का जो सिद्धांत है वो द्वैतवाद है। अब ये तत्ववाद कहाँ से आ गया, कुछ तो ये भी मानते हैं कि ये मध्वाचार्य का ये सिद्धांत नहीं है, तत्ववाद का जो सिद्धांत मध्वाचार्य का नहीं है। जो भी हो, लेकिन ये जो है जब अचिंत्य भेदाभेद तत्व को जान गए तो फिर इनको इनके मन को और संतुष्टि प्राप्त हुई। तो अभी तक उन्होंने जितना ज्ञान प्राप्त किया था तत्ववाद का, तो उन्होंने मतलब इसको फैलाया। लेकिन सबसे मुख्य बात तो यही है कि श्री कृष्ण की भक्ति को फैलाना है, श्री कृष्ण का संदेश हमें देना है। हम सब जीव जो है उनके दास हैं और हम जो है उनसे विमुख होकर के यहाँ कष्ट भोग रहे हैं। तो सिद्धांत केवल यही है। तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, गीता में भगवान के सब धर्मों का त्याग के मेरे शरण में आओ। तो अगर कृष्ण का संदेश कोई देता है, या इमं परमं गुह्यं मद भक्ति सुविधास्यति भक्तिमयी परां कृत्वा मामेवेशति असंशयः, तो जो इस गीता के सिद्धांत को मेरे भक्तों में बताएगा तो वो जो है मेरी पराभक्ति प्राप्त करेगा, मुझे प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। न चातस्मान मनुष्येषु कश्चिन मे प्रियतमः, तो उससे बढ़कर के मेरा प्रिय और कोई नहीं है। तो अगर कोई अगर धर्म अगर त्याग करके आप कृष्ण का संदेश दे रहे हैं लोगों को और कृष्ण की शरण में लोगों को अगर ला रहे हैं, तो कृष्ण तो कह रहे हैं कि मैं सब पापों से तुम्हें मुक्त करूँगा। तो कोई दोष अगर लगता भी हो तो उसमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप श्री कृष्ण को प्रसन्न कर रहे हैं। कृष्ण कहते हैं नचा तस्मान मनुष्यसु कश्चिन मे प्रियतमः, उससे बढ़कर के मनुष्य में कोई मेरा प्रिय कार्य करने वाला नहीं है। तो भद्रो विद्याभूषण ने जो कार्य किया वो ये कार्य किया कि इससे बढ़कर के और प्रिय कार्य कोई नहीं हो सकता है ना। तो जितने भी जो भटके हुए जीव हैं श्री कृष्ण के शरण में लाए, तो उन्होंने जीव गोस्वामी के षठ संदर्भ का जो है भाष्य लिखा है, और जो है गौड़ी वैष्णव का जो है उन्होंने इज्जत की रक्षा की, गौड़ी वैष्णव को जो है मान्यता की जो है रक्षा की। तो ये तो गोविंद जी स्वयं इनके साथ हैं। तो अगर भगवान गोविंद स्वयं इनको शक्ति दे रहे हैं कोई कार्य करने की, तो फिर इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि कुछ ऐसा हो। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि गुरु का त्याग किया हो इन्होंने और कोई गुरु जो है इनसे नाराज हुआ हो, रुष्ट हुआ हो कि तुमने मेरा त्याग किया, तो ऐसी कोई बात ही नहीं। ठीक है ना, धन्यवाद। श्री बज्र विद्याभूषण तुर्भाव तिथि महाभोत्सव की, श्रीमती गंगा माता गोस्वामी आविर्भाव तिथि महाभोत्सव की, श्री गंगा पूजा महाभोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की।